योना अध्याय तीन। योना अध्याय तीन पद एक से लेकर तीन तक। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना प्रभु के वचन के अनुसार निनवे को गया। परमेश्वर कई बार हमें विफलता के स्थान पर ले आता है और वहां से हमें नया आरंभ करना होता है। मैं इसे प्रायः शून्य पर वापसी कहता हूं। मैं विस्मित हूं कि कितनी बार परमेश्वर मुझे शून्य पर लौटा कर लाता है और तब वो कहता है ठीक है, तब हम वहां से नया आरंभ करते हैं। सत्य तो यह है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक इस क्षेत्र में विजय प्राप्त न कर लूं। मैं अपने जीवन में परमेश्वर के मार्गों में आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि परमेश्वर ने उस विफलता का निवारण न कर दिया हो। परमेश्वर जब मुझे फिर से उसी स्थान ले आता है तब मेरे सामने वही समस्या खड़ी हो जाती है, परंतु इस बार मैं परमेश्वर का आज्ञा पालन करता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। योना अध्याय तीन पद तीन। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वो तीन दिन की यात्रा का था। एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में आपको तीन दिन तक चलना होगा। योना अध्याय तीन पद चार और पांच। और योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। कैसी अनोखी बात! इसमें कोई शक नहीं कि योना अपने हृदय में उस काम से खुश नहीं होगा जो वो कर रहा था। वो अगले भाग में दर्शाया गया है कि निनवे के नष्ट ना किए जाने के कारण योना परमेश्वर पर गुस्सा था। वो अभी भी इन लोगों से घृणा करता था। वो अभी भी नहीं चाहता था कि परमेश्वर इन लोगों के जीवनों में काम करे। वो सिर्फ इसलिए वहां था कि वेल के पेट के अंदर तरल पदार्थ में धुलने से ये बेहतर उत्तम था। ध्यान दीजिए कि उसके संदेश में कुछ भी आशा नहीं है, पश्चाताप की कोई पुकार नहीं है, कोई प्यार भरा प्रोत्साहन नहीं है, केवल न्याय का संदेश। 40 दिन और निनवे नाश कर दिया जाएगा। लेकिन योना की झुंझुलाहट से ज्यादा लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। योना अध्याय तीन पद पांच से लेकर आठ तक। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सभों ने टाट ओढ़ा। तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करे। पश्चाताप के लिए क्या ही जबरदस्त पुकार! मनुष्य और पशु सब जानवरों को भी, उन्हें खाना मत दो। और जैसे पशु भूख के लिए डकारे, उनकी ये चिल्लाहट परमेश्वर की दया के लिए दोहाई हो। इसलिए जब जानवर भूखे होते हैं, आप उनकी वाणी को गलियों या सड़कों में सुन सकते हैं। होने दे कि ये आवाज दया के लिए परमेश्वर की दुहाई दे। ये लोगों का सार्वजनिक पश्चाताप दिखाता है जब वे टाट ओढ़कर और चिल्लाकर दुहाई दे रहे थे। निनवे का दूसरा उदाहरण जो यीशु ने दिया वो उस समय था जब वो शास्त्रियों और फरीसियों से कह रहा था, मत्ती अध्याय 12 पद 41। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो यहां वो है जो योना से भी बड़ा है। निनवे के लोगों ने इस गुस्से वाले नबी का प्रचार सुनकर मन फिराया जिसने केवल परमेश्वर के न्याय का प्रचार किया था। यहां परमेश्वर का पुत्र आया है, वो लोगों पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट कर रहा है कि वे प्रोत्साहित हो और परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करें तथा परमेश्वर के प्रेम में आ जाएं, परंतु फिर भी वे अपने मनों को नहीं फिराते। अतः निनवे के लोग न्याय के दिन खड़े होंगे और इस युग के उन लोगों पर उंगली उठाएंगे, अर्थात उन पर जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर की खोज नहीं की। वे इस पीढ़ी को न्याय में पापी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने तो योना के संदेश पर पश्चाताप किया था। उन्होंने टाट ओढ़ा, यहां तक कि राजा ने भी अपने राजसी वस्त्र उतारकर चुभने वाला टाट ओढ़ा और जानवरों को भी पहनाया। सब लोगों ने इस व्यापक पश्चाताप में भाग लिया। किस आधार पर उन्होंने पश्चाताप किया? योना ने नहीं कहा पश्चाताप करो नहीं तो बर्बादी आएगी। उसने पश्चाताप का प्रचार एकदम नहीं किया, बल्कि वो तो चाहता ही नहीं था कि वे पश्चाताप करें। जब उन्होंने पश्चाताप किया तो वो नाराज हो गया। वो इतिहास का एकमात्र प्रचारक था जो अपनी सेवकाई की सफलता नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने स्थाई आशा रखकर पश्चाताप किया कि योना अध्याय 3 पद 9, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। कौन कह सकता है? हो सकता है अगर हम पश्चाताप करें तो परमेश्वर दया करेगा। हम नहीं जानते, वहां दया की कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, अनुग्रह की कोई प्रतिज्ञा उन लोगों को नहीं दी गई थी, केवल न्याय का एक संदेश था। फिर भी वे आशा के इस पतले धागे पर पश्चाताप करने को तैयार हो गए थे। कौन बता सकता है? हो सकता है, परंतु आपको आशा के इस पतले धागे को नहीं पकड़ना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप मन फिराएंगे तो परमेश्वर दयावान है, परमेश्वर कृपालु है, वो अवश्य क्षमा करेगा। आपको अपनी आशा लटकाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको परमेश्वर के वचन से आश्वासन देता हूं कि यदि आप पश्चाताप करें और अपने दुराचारों से फिर जाएं तथा पाप के मार्गों का त्याग करें तो परमेश्वर निश्चय ही आपको क्षमा करेगा। परमेश्वर आपको अनुग्रह और दया प्रदान करेगा तथा आप अपने पापों से शुद्ध किए जाएंगे और परमेश्वर की संतान बनेंगे। ये मैं परमेश्वर के अपरिवर्तनीय वचन पर निर्भर करके कहता हूं। उन लोगों के पास इस तरह की आशा नहीं थी, उनके पास इस तरह का संदेश भी नहीं था। उनके पास जो था वो आशा थी कि कौन जानता है परमेश्वर क्षमा कर दे। इस पतले से धागे से उन्होंने अपनी आशा को बांधा और मन फिराकर प्रायश्चित किया। योना अध्याय 3:10। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे थे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। यहां फिर से हमारे सामने परमेश्वर के कार्य का वर्णन करने में समस्या आ रही है, क्योंकि हमारे पास सब इंसानी तरीके हैं। परमेश्वर अनंत सनातन परमेश्वर है और हम सीमित मनुष्य। जब हम आपस में बात करते हैं तो हम इंसान सीमित भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास मनुष्यों से परे कोई भाषा नहीं है। कुछ बातें तो ऐसी है जिनका वर्णन कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन बातों को समझाने के लिए ना तो शब्द है ना भाषा की हम उन्हें समझ पाए। यीशु निकोदिमस को आत्मिक विषयों के बारे में समझाना चाहता था। उसने कहा, देख निकोदिमस, तू यहूदियों का गुरु है और यदि मैं तुझसे सांसारिक बातों की चर्चा करूं और तू उन्हें ना समझे तो मैं कैसे स्वर्गीय बातों की तुझसे चर्चा कर सकूंगा। पौलुस प्रेरित अपनी स्वर्ग की यात्रा के बाद जब वापस आया तब उसने कहा, चाहे शरीर में या शरीर के बाहर मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था और मैंने जो वहां सुना उनका वर्णन करना असंभव है। दरअसल ये अपराध होगा कि मैं उनका वर्णन करने की कोशिश करूं तो मैं अन्याय करूंगा, क्योंकि परमानंद को परिभाषित करने के लिए कोई शब्द नहीं है। जो बातें मैंने महसूस की, जो बात मैंने सुनी, जो चीजें वहां थी, असंभव, उनके लिए तो शब्द ही नहीं बने हैं। अतः परमेश्वर के बारे में बात करने में हम मनुष्य की शब्दावली में सीमित हैं। इसलिए जब तक दंड प्रतिज्ञा का दंड नहीं आता तब तक हमें मानवीय भाषा का ही उपयोग करना होगा, परंतु ये भाषा परमेश्वर के संबंध में अर्थहीन होगी। इसका मुख्य कारण है कि परमेश्वर बदलता नहीं। परमेश्वर ने घोषणा की, गिनती अध्याय 23:19, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करें? मलाकी अध्याय 3:6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। अतः यहां प्रकट है, भविष्यत वक्ता ने कहा 40 दिन और फिर विनाश। सब लोगों ने प्रायश्चित किया और बर्बादी नहीं आई। अतः इसको बताने के लिए हम अपनी सीमित भाषा का प्रयोग करते हुए कहेंगे, परमेश्वर पछताया या परमेश्वर बदल गया और उसने उन्हें नष्ट नहीं किया। नहीं, परमेश्वर हमेशा से जानता था कि वे प्रायश्चित करेंगे, इसलिए उसने योना को उनके पास भेजा। परमेश्वर जानता था कि वो उन्हें दंड नहीं देगा। यदि वे पश्चाताप नहीं करते तो परमेश्वर उन्हें दंड अवश्य देगा। परमेश्वर आरंभ से अंत तक सब कुछ जानता है। आप कहेंगे, ओह, परंतु मेरी समझ में नहीं आता। निश्चय ही आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपकी समझ छोटी और सीमित है, जबकि परमेश्वर सीमित नहीं है। परमेश्वर ने कहा है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारी समझ से परे है। अतः परमेश्वर का स्वभाव और उसके गुणों को समझने की कोशिश करना केवल निराशा का काम है।